हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सुनैना को काफी गिल्ट हो रहा था, क्योंकि उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कल रात आदित्य को ये चोट लगी थी। वैसे तो वो नशे में भी था, लेकिन फिर भी काफी गलती सुनैना की भी थी। उसने उसे गलत समझा था, इसलिए उसने रवि से कहा कि डॉक्टर को कॉल करके घर पर ही बुला ले। लेकिन मैम, सर, तो रवि बोल ही रहा था कि सुनैना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बुलाइए डॉक्टर को, मैं बोलती हूँ आपके सर को। ओके मैम, सुनैना की बात सुनकर इतना बोलते हुए रवि ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और डॉक्टर का नंबर डायल करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गया। सुनैना थोड़ा आगे बढ़ी और उसने स्टडी रूम के दरवाज़े पर नॉक किया। उसने देखा कि दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो देखा कि रूम की सारी लाइट्स ऑफ थीं। सुनैना ने बाहर दरवाज़े से ही आवाज़ लगाई, आदित्य, आदित्य कहाँ हो तुम, लाइट क्यों ऑफ कर रखी है? इधर रवि नीचे आया और उसने डॉक्टर को कॉल करके घर पर ही बुला लिया था। जैसे ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया, गीता ने उससे पूछा, क्या हुआ भैया को, कैसे चोट लगी है? पता नहीं गीता, तुम तो जानती ही कहाँ है सर कुछ, लेकिन सिर पर लगी है, ये नहीं पता कि कब और कैसे लगी। रवि ने एक ठंडी सांस भरते हुए गीता से कहा, हम दोनों ने तो हमेशा ही भैया को ऐसे ही देखा है, लेकिन अब लगता है भाभी उन्हें संभाल लेंगी। गीता ने सुनैना की तरफ इशारा करते हुए रवि से कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है, अभी भी मैम ने ही मुझसे डॉक्टर को कॉल करने के लिए कहा था, नहीं तो सर तो हमेशा की तरह अपने स्टडी रूम में जाकर ड्रिंक करने लगे होंगे। रवि ने गीता को पूरी बात बताई। गीता के चेहरे पर एक उम्मीद भरी मुस्कान आ गई। क्रमशः शहर से कुछ दूर शहर के आउटसाइड में बने एक बड़े से स्टूडियो के आगे नैना की टैक्सी रुकी। नैना ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और भगवान का नाम लेते हुए स्टूडियो के मेन गेट से स्टूडियो के अंदर चली गई। हेलो सर, आई एम नैना, नैना अग्रवाल, मुझे कॉल आई थी यहाँ से कि मेरा सिलेक्शन हो गया है जो मैंने लास्ट वीक ऑडिशन दिया था। उस बेस पर ब्लैक जीन्स पर स्टूडियो के लोगों की प्रिंट वाली ब्लैक टी शर्ट पहने माइक और हेडफोन लगाए हुए एक लगभग 30-35 साल के आदमी से नैना ने कहा। वहाँ पर काफी सारे लोगों ने लगभग उसी तरह के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन ये आदमी काफी लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, इसलिए नैना को ये वहाँ का बॉस या थोड़ा मेन आदमी लगा। कुछ देर वहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद नैना ने उस आदमी से ही इतना बोला। नैना के बात सुनने के बाद उस आदमी ने कुछ पल के लिए नैना के सामने ठहर कर उसे ऊपर से नीचे तक एक नज़र निहारा और फिर गौर से उसके चेहरे की तरफ देखता हुआ बोला, ओके, अगर तुम्हें कॉल किया गया है तो हो सकता है तुम आज सेलेक्ट हो जाओ इस एड फिल्म के लिए, लेकिन अभी हमारे कास्टिंग डायरेक्टर नहीं आए हैं, तो तुम उस रूम में जाकर वेट करो, जैसे ही वो आते हैं मैं तुम्हें बुला लूँगा। ओके, लेकिन डायरेक्टर सर कितनी देर में आएंगे? मुझे तो 12 बजे तक का टाइम दिया गया था उनसे मिलने के लिए और 12 बजने वाले ही हैं। उस आदमी की पूरी बात सुनकर नैना ने एक और सवाल किया, ज्यादा सवाल जवाब मत करो लड़की, तुम्हारी जैसी हजारों आती हैं यहाँ रोज और तुम्हारे लिए बाकी सारे लोगों को टाइम पर आना जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन तुम लेट हुई तो तुम्हारा मौका जरूर हाथ से जा सकता है, इसलिए जितना कहा है उतना करो अभी, मैंने कहा ना वो जैसे ही आएंगे तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नैना की बात सुनकर उस आदमी ने थोड़ा गुस्से से रूढ़ होते हुए कहा, ओके ओके मैं वेट करती हूँ। उस आदमी के बिहेवियर देखकर नैना ने आगे कोई और सवाल नहीं किया और चुपचाप वेटिंग एरिया की तरफ जाकर एक चेयर पर बैठ गई। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला तो देखा उसके मोबाइल में अभी भी नेटवर्क नहीं था। कैसी जगह है ये, मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है, बात भी नहीं हो पाई सोनू से और फिर अभी यहाँ भी, पता नहीं सब इतना रूडली क्यों बात करते हैं। अरे माना स्ट्रगलर हूँ मैं अभी, लेकिन फिर भी थोड़ा कायदे से हर बात का जवाब देंगे तो क्या चला जाएगा इन लोगों का। नैना उस जगह पर बैठी हुई मन ही मन सारी बातें याद करती हुई ये सब बड़बड़ा रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। वैसे पिछले एक महीनों से वो इसी तरह ऑडिशन दे रही थी और कई सारी फिल्म लोकेशन और स्टूडियोज के चक्कर काट रही थी और अब तक तो उसे इस बात का अंदाजा भी हो चुका था कि ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं जितना कि बाहरी दुनिया से नजर आता है। असल स्ट्रगल काफी ज्यादा चैलेंजिंग है और मुश्किल भी, लेकिन मुश्किलें तो हर जगह पर ही थीं। उसकी अब तक की लाइफ क्या कम मुश्किलों में कटी थी। वहाँ पर नैना जैसी ही 2-3 और लड़कियाँ बैठी हुई थीं, लेकिन सब एक दूसरे से काफी दूर दूर बैठी हुई थीं और एक दूसरे को अजीब नजरों से घूर कर देख रही थीं। साफ पता चल रहा था कि वो सब भी उसकी तरह ही यहाँ पर बुलाई गई हैं या फिर खुद से ही आई होंगी, लेकिन कोई भी एक दूसरे को जानती नहीं थी, इसलिए आपस में बात करने से भी कतरा रही थीं, क्योंकि काम तो इसी एक दो को ही मिलना था और बाकी सबको यहाँ से ही वापस अपने घर जाना पड़ता है, इसलिए एक दूसरे के लिए द्वेष और कंपटीशन की भावना तो उन सभी की आंखों में ही नजर आ रही थी उस वक्त। क्रमशः